आज है 30 जुलाई दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। मुंबई हमलों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, तो फांसी की सजा को लेकर फिर शुरू हुई बहस।
मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मैं इतना ही सबसे विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हम सभी को एकजुट होकर मुकाबला करने की आवश्यकता है।
मलेशिया में कथित रूप से बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के मजदूरों के मामले में अब केंद्र सरकार ने की पहल।
वह बंधक बना के रखे, खाना पीना दवाई माटी के तरफ से प्रताड़ित कर रहे, खाना भी नहीं देते। एक शिकायत हम कलेक्टर एसपी और श्रम विभाग में करें।
नेपाल में हुए भूस्खलन में 23 लोगों की मौत। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। मुंबई बम विस्फोटों के दोषी याकूब मेमन को आज शाम लगभग 5:15 बजे मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इससे पहले करीब 1:30 बजे याकूब का पार्थिव शरीर मुंबई में माहिम में उनके घर लाया गया था। माहिम से चंदनवाड़ी तक के जनाजा ले जाने के रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा इंतजाम देखने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर और कानून व्यवस्था के संयुक्त पुलिस आयुक्त मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान के मुताबिक अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता टाल दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा तालिबान नेतृत्व के कहने पर और तालिबान नेता मुल्ला उमर की मौत की खबरों के कारण किया गया। पाकिस्तान में दोनों पक्षों के बीच कल यानी शुक्रवार को बातचीत होनी थी। इसमें भाग लेने के लिए तालिबान के 6 नेता पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके थे, लेकिन कल ही मुल्ला उमर की मौत की खबर से बातचीत के तयशुदा वक्त में तब्दीली लाई गई। मिस्र की राजधानी काहिरा की एक अदालत ने न्यूज़ चैनल अल जजीरा के 3 पत्रकारों पर दोबारा मुकदमे में फैसले को मुलतवी कर दिया है। इस पर अल जजीरा ने रोष जाहिर किया है। अल जजीरा के कार्यकारी डायरेक्टर जनरल ने बहिर मोहम्मद, मोहम्मद फामी और पीटर ग्रेस्टे के कष्टों को जल्द खत्म करने की अपील की। इन तीनों पत्रकारों पर प्रतिबंधित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करने का आरोप था। बहिर मोहम्मद को फरवरी में जमानत पर छोड़ा गया था। उन्होंने फैसले में इस देरी पर निराशा जाहिर की।
It's really disappointing what happened today. We were expecting a verdict today.
आज जो हुआ वो बहुत निराशाजनक है। हम एक फैसले की उम्मीद कर रहे थे। हमने रेडियो पर भी सुना था कि आज ही फैसला आएगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई नहीं मिला। मैंने पुलिस अधिकारियों और उस अधिकारी से भी पूछा जो अदालत की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होता है। सब ने यही कहा कि सुनवाई में देरी हो गई है। ये थे बहर मोहम्मद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की की सेना का कहना है कि कुर्द अलगाववादियों ने देश के दक्षिण पूर्व में 3 सैनिकों को मार दिया है। सेना के मुताबिक सिरनाक प्रांत में पीकेके चरमपंथियों ने सैनिकों के एक दल पर गोलियां चला दी। हाल के दिनों में तुर्की के युद्ध विमानों ने उत्तरी इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की में पीकेके के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। सैकड़ों कुर्द संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। सरकार का कहना है कि तुर्की पर पीकेके के हमलों ने शांति की कोशिशों को मुश्किल बना दिया है। इस क्षेत्र में तुर्की इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों पर भी हमले कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की शरणार्थियों की ब्रिटेन आने की कोशिशों को झुंड बनाकर जमघट लगाना बताने के लिए व्यापक आलोचना हो रही है। प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टी की नेता हैरियट हरमन ने कहा कि प्रधानमंत्री कैमरन को याद रखना चाहिए कि वे लोगों की बात कर रहे हैं, मक्खी मच्छरों की नहीं। लिबरल डेमोक्रेट नेता टिम फेरन ने कहा कि प्रवासी बहुत हताश लोग हैं और उनमें से कुछ ब्रिटेन आने की कोशिश में मारे भी गए हैं। प्रधानमंत्री कैमरन कल फ्रांस के बंदरगाह कालेस में हुई घटना का जिक्र कर रहे थे, जब सैकड़ों प्रवासियों ने चैनल टनल में घुसने की कोशिश की। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। और जैसा कि आपने समाचारों में प्रगति सक्सेना से सुना, मुंबई हमलों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद अब मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुंबई के संवेदनशील इलाकों खासकर माहिम में 144 लागू कर दी गई है। माहिम में याकूब मेमन का घर है। याकूब मेमन का शव परिवार को सौंपने के बाद पुलिस ने परिवार को कोई जुलूस ना निकालने के निर्देश दिए थे। इस बीच मुंबई धमाकों के एक पीड़ित ने जान से मारे जाने की धमकी दी, कहा है कि उन्हें जान से मारे जाने की धमकी मिल रही है। पूरी जानकारी दे रहे हैं मुंबई से अश्विन अघोर।
मुंबई में मार्च 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को आज सुबह नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। याकूब मेमन, उनके परिवार तथा कई कानूनी विशेषज्ञ, राजनेता, अभिनेताओं की ओर से फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। यहां तक कि देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने वरिष्ठ वकीलों की याचिका पर रात भर सुनवाई की। इस सब के बावजूद याकूब मेमन की फांसी को उम्र कैद में बदलने की हर अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। आज सुबह 7 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में पुलिस, कारागार तथा सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के 10 अधिकारियों की उपस्थिति में याकूब मेमन को फांसी दी गई। इसके पहले नियमों के मुताबिक याकूब मेमन से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उन्होंने अपने बेटे से बात करने की इच्छा जाहिर की, जिसके अनुसार उनकी बेटी से बात कराई गई। उन्हें नए कपड़े दिए गए और पसंदीदा नाश्ता मुहैया कराया गया। जेल प्रशासन ने याकूब मेमन को कुरान भी पढ़ने के लिए दिया और सुबह की नमाज अदा करने के बाद याकूब मेमन को फांसी दी गई। जब जेल में मौजूद डॉक्टरों ने याकूब मेमन के मौत की पुष्टि की, तब पोस्टमार्टम के बाद उनका शव उनके भाई सुलेमान तथा उस्मान के हवाले कर दिया गया, जिसे मुंबई लाकर मरीन लाइन स्थित बड़ा कब्रिस्तान में शाम 4:30 बजे दफनाया गया। याकूब मेमन की फांसी को लेकर मुंबई तथा नागपुर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर मुंबई के संवेदनशील इलाके जैसे भाईकाला, नागपाड़ा, आगरीपाड़ा, बांद्रा तथा माहिम में याकूब मेमन के घर के बाहर SRP, CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स, राइट कंट्रोल पुलिस, इनके अलावा बड़ी मात्रा में पुलिस अधिकारी तथा अधिकारी तैनात किए गए थे। जहां एक ओर याकूब की फांसी टालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर बम धमाकों के पीड़ित यह मांग कर रहे थे कि उनकी क्षमादान याचिका खारिज कर दी जाए। दादर के निवासी तुषार देशमुख ने उन बम धमाकों में अपनी मां को खोया था। तुषार ने एक सिग्नेचर कैंपेन कर याकूब को फांसी देने की मांग की थी। अपनी इस मांग को लेकर वह महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री से भी मिले। उनका कहना था कि याकूब की फांसी को उम्र कैद में तब्दील करना बम धमाकों के पीड़ितों के प्रति अन्याय होगा। उनके इस कैंपेन के बाद तुषार के मित्रों ने दावा किया है कि उन्हें अनजान नंबर से फ़ोन कर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से करने के बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। माहिम के अल हुसैनी बिल्डिंग के से लेकर मरीन लाइन्स के बड़ा कब्रिस्तान तक रास्ते में चाक चौबंद बंदोबस्त किया गया था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया खुद पूरी परिस्थिति पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने माहिम जाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने याकूब मेमन की दफन विधि की तस्वीरें लेने से या वीडियो बनाने से मीडिया को प्रतिबंधित किया गया था।
ये थे मुंबई से अश्विन नघोर। उधर याकूब मेमन को फांसी की सजा दिए जाने के बाद भारत में फांसी की सजा को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि याकूब मेमन मामले में जिस तरह से सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है, उससे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में रात को विशेष सुनवाई हुई और इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरती गई है और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चरमपंथ के खिलाफ एकजुट होने की बात कही। एक रिपोर्ट के साथ नितिन श्रीवास्तव।
पहले अफजल गुरु और उसके बाद याकूब मेमन, कितने और हैं जो कतार में खड़े हैं राष्ट्र की सामूहिक चेतना को तृप्त करने के लिए। गुरुवार सुबह 4:45 बजे ये ट्वीट किया था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने। इसके कुछ ही घंटे बाद याकूब मेमन को नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हुई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि 1993 के मुंबई बम धमाकों में दोषी करार दिए गए याकूब मेमन की फांसी पर एक बहस छिड़ चुकी है। सुनिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को।
लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम पॉइंटेड आउट द सोशियो इकोनॉमिक बायसेस कमिंग थ्रू द आर्बिट्रेरीनेस इन मेनी जजमेंट्स।
शशि थरूर कह रहे थे कि खुद दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी फांसी की सजा दिए जाने के हिमायती नहीं थे और कई फैसलों के बाद ये भी देखा गया है कि किसी दोषी को मृत्युदंड जैसे सजा दिए जाने से समाज में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। शशि थरूर के इस बयान से राजनीतिक भूचाल सा आ गया और सरकार के कई बड़े और दिग्गज नेताओं ने खुलकर इस तरह के बयानों का खंडन किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह।
देखिए, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मैं इतना ही सबसे विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हम सभी को एकजुट होकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। मैं सभी से यह अपील करता हूं कि सभी को एकजुट होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ।
याकूब मेमन की फांसी को लेकर तमाम अखबारों के संपादकीय भी इस तरह के दंड से निजात पाने की बात कर रहे हैं। कुछ अन्य जानकारों का मत है कि भारत में एक नए कानून की जरूरत है जिससे इस तरह की सजा का ही खात्मा हो सके। बहरहाल, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह भी कहा कि सभी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई प्रक्रिया में पूरा भरोसा रखना चाहिए।
शायद विश्व के इतिहास में किसी भी दुनिया के देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि रात को 2:30 बजे भी उस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट किसी की मर्सी पिटीशन की हेयरिंग करने के लिए बैठी हुई हो। मैं समझता हूं कि इससे अधिक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट सिस्टम और कोई दूसरा नहीं हो सकता है।
वैसे शशि थरूर के ट्वीट और बयान के तुरंत बाद उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुलकर उनके समर्थन में उतर आए। दिग्विजय सिंह ने कहा,
फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द पीपल।
दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि कई कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों के पास एक मौका है लोगों के पास ये कहकर जाने का कि जब राजीव गांधी के हत्यारों और भुल्लर जैसों को फांसी की सजा से माफी मिल गई, तब याकूब मेमन को फांसी क्यों दे दी गई। दिग्विजय के इस तीखे बयान के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता याकूब को फांसी देने के पक्ष में खुलकर बोल बैठे। जहां मुख्तार अब्बास नकवी जैसों ने ट्वीट पर अपने विचार जाहिर किए, वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा,
द इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स व्हिच हैव कम फ्रॉम सम ऑफ द कांग्रेस पार्टी लीडर्स विद रिगार्ड टू द,
सभी विपक्षी दलों को ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत बताई। उनका निशाना खास तौर पर कांग्रेस पार्टी थी। अब जब याकूब मेमन को फांसी भी हो चुकी है और इस पर एक बहस भी छिड़ चुकी है, काफी लोगों का ध्यान भारत में मौजूद इस कानून पर दोबारा जा रहा है। इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि पिछले 20 वर्षों में 5 लोगों को सजा के तौर पर फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे दूसरी दौर की शांति वार्ता टल गई है। अधिकारियों का कहना है कि तालिबान के नेता मुल्ला उमर की मौत की खबर के बाद एक अनिश्चितता का माहौल बना है। मैंने पेशावर फोन कर रहे मुल्ला यूसुफ जई से पूछा कि क्या अब ये बातचीत अधर में लटक गई है।
हाँ, यकीनन ये तो बिल्कुल वाज़े था कि ये बातचीत अभी नहीं हो सकती, इसको मुलतवी करना पड़ेगा क्योंकि तालिबान की सफों में इंतशार है। तालिबान के जो फाउंडर थे, बानी थे मुल्ला मोहम्मद उमर, तो उनका इंतकाल जो हुआ इसको बिल आखिर मान लिया गया है और अभी तालिबान ने अपने नए अमीर या लीडर का इंतखाब किया है, तो मेरे ख्याल में वो अपना सलाह मशवरा करेंगे। उनके इत्तेफाक के ऊपर भी एतराजात हुए हैं, ये मेरे ख्याल में कोई मुत्तफिका फैसला नहीं होगा, इसलिए मुज़ाकरात अगर होते भी तो उसमें कोई पेशरफ्त ना होती, कोई बात ना बनती, इसलिए इनको मुलतवी किया गया। जो कल बातचीत होनी थी वो तो अभी पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया है कि वो नहीं होगी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी नई तारीख मुकर्रर करेंगे। अलबत्ता ये नज़र आ रहा है कि जो अभी खबर आ रही है, तालिबान सोर्सेज कह रहे हैं कि तालिबान की तहरीक के नए अमीर, नए लीडर का इंतखाब हुआ है, अख्तर मोहम्मद मंसूर को मुकर्रर किया गया है, तो वो भी बातचीत के हक में हैं, उन्हीं ने ये बातचीत शुरू करवाई थी। तो लगता ये है कि आइंदा जाकर ये मुलाकात होगी, बातचीत होगी। अलबत्ता इसमें कितना फ़ायदा होगा, कितनी बात आगे बढ़ेगी, ये मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा। काफ़ी इख्तलाफात हैं, उनको दूर करने में वक्त लगेगा।
जी, मुल्ला उमर जो है तालिबान में 1995 में शामिल हुए थे, तो अब ऐसे में इनका तालिबान पर कितना असर रहेगा?
देखें, ये तालिबान की तहरीक में शुरू में ही शामिल हो गए थे 1994-95 में और कई अहम ओहदों पे रहे। ये तालिबान की सरकार में सिविल एविएशन के वजीर भी रहे, तालिबान की शूरा के रुकन थे। जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में 2001 में ख़त्म हो गई तो फिर जब इन्होंने जंग शुरू की अफगानिस्तान में, तो ये उसमें बड़े अहम कमांडर थे और शूरा के रुकन भी थे। और जब मुल्ला मोहम्मद उमर ने इनको अपना नायब, अपना डिप्टी मुकर्रर किया था, और अभी जिस तरह बात सामने आ गई है, कंफर्म हो गया है कि मुल्ला मोहम्मद उमर का इंतकाल 2 साल पहले हुआ, जुलाई 2013 में, तो उस वक्त से तो ये कायम मुकाम लीडर हैं, नेता हैं, यही तहरीक को चला रहे हैं। तो ये तालिबान की सफों में एक बड़े ही पुराने आदमी हैं और इनका काफी असर भी है, लेकिन इनके मुखालिफिन भी काफी हैं। اور کافی طالبان نیتا کمانڈر وہ سمجھتے ہیں کہ ملا عمر کے بڑے بیٹے محمد یعقوب کو نیا لیڈر بنانا چاہیے، تو یہ بھی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ میرے خیال میں اب دیکھنا پڑے گا کتنے لوگ ان کو مانتے ہیں طالبان کے، جو لوگ ان کے مخالف ہیں کیا وہ اپنی مخالفت چھوڑ دیں گے، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہ افغان سرکار سے بات چیت کریں گے، کتنے لوگ اس بات کو مان جائیں گے، ابھی کافی مسئلے حل ہونا باقی ہیں۔
طالبان نے ملا منصور کو چنا اپنا نیا نیتا، یہ تھے پشاور سے ورشٹھ پترکار رحیم اللہ یوسف زئی۔ کل دیر رات نیپال کے پشچمی علاقے میں ہوئے ایک بڑے بھوسکلن میں کم سے کم 23 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے، پولیس کے انوسار 10 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ادھر مانسون کی بارش کے چلتے نیپال کے 3 ضلعوں میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی گھائل ہوئے ہیں، وہیں مکانوں کے ڈھہنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ ہمارے سہیوگی روہت جوشی نے بی بی سی نیپالی سیوا کے سنواداتا سنجے ڈھکال کو فون کر تازہ حالاتوں کی جانکاری لی۔
دیکھیے، کل رات جو بہت بھاری بارش ہوئی تھی، تو یہ گھٹنا ہوئی ہے نیپال کے ویسٹ ریجن میں، کاٹھمنڈو سے قریب 250 کلومیٹر ویسٹ میں، کاسکی ڈسٹرکٹ میں، مطلب پوکھرا سٹی کے آس پاس میں، یہ لومبے نام کا جو جگہ ہے وہاں پہ بہت بڑا سا لینڈ سلائڈ ہوا، اور اس سے ابھی تک 24 لوگوں کی موت ہونے کی خبر آ چکی ہے۔ آدھی رات کے قریب یہ گھٹنا ہوئی اور اس میں بہت سارے جان مال کا نقصان ہوا ہے۔
کیا ابھی اور لوگوں کے بھی ملبے میں دبے ہونے کی آشنکا ہے؟
پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک 10 سے زیادہ لوگوں ابھی تک مسنگ ہیں، یہ مطلب یہ سمبھاونا تو نکال نہیں سکتے آپ کی، بڑھ سکتا ہے کچھ، یہ سنکھیا میں وردھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ابھی تک مطلب کوئی اس سماچار ابھی تک ملا نہیں کہ وہ مسنگ لوگ کس حال میں ہوں گے۔
کیسا علاقہ ہے جہاں یہ بھوسکھلن ہوا ہے؟
یہ دیکھیے، اس میں دو لملے اور دھکر پوکھری، تاماگی لملے اور دھکر پوکھری کاسکی کی دو گاؤں ہے، تو بھدورے اس کا نام ہے۔ تو یہاں پہ ہوا تھا، یہ مطلب ایک سیٹلمنٹ گرامین بستی ہے، پہاڑی علاقہ، وہیں پہ یہ گھٹنا ہوئی تھی۔
راحت کاری کیسا چل رہا ہے ادھر؟
وہاں کے چیف ڈسٹرکٹ آفیسر سے ہماری بات ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے مطلب جو بھی ہو سکے وہ ہم کر رہے ہیں، مطلب سرکشا کرمی کو ڈپلوئی کر دی، تو ابھی تک تو سرچ اینڈ ریسکیو لگے ہوئے ہیں۔
اور سرکار کی اور سے کیا اس بارے میں کوئی معاوضے وغیرہ کی گھوشنا ہوئی ہے اب تک؟
ابھی تک تو کچھ بھی مطلب نہیں ہوئی، ابھی لوکل لیول میں چیف ڈسٹرکٹ آفیسر کے لیڈرشپ میں یہ سرچ اینڈ ریسکیو ہو رہی ہے، مطلب پولیس آرمی سب لگے ہوئے ہیں۔
تو یہ تھے بی بی سی سنواداتا سنجے ڈھکال، اور ان سے بات کر رہے تھے روہت جوشی۔ پانچ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ گجرات کی بلاتکار پیڑتا کے 6 ماہ کے بھرون کا گربھپات کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کی یہ ٹیم سپریم کورٹ کے آدیش پر بنی تھی۔ کورٹ نے یہ فیصلہ بلاتکار پیڑتا کی یاچیکا پر سنوائی کے بعد دیا ہے۔ سیدھے چلتے ہیں احمد آباد ہمارے سہیوگی انکور جین کے پاس۔ انکور، یہ بتائیے کہ یاچیکا میں کیا کہا تھا پیڑتا نے؟
یہ گجرات میں بلاتکار کے بعد گربھوتی ہوئی 14 سال کی لڑکی کا شکروار صبح 10 بجے گربھپات کیا جائے گا، یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے جانچ کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ گربھپات کرنے سے ہی اس کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے منگلوار کو اس سمبندھ میں ڈاکٹروں کے دل کو ضروری فیصلے لینے کی اجازت دی تھی، اور ایسا انہیں گربھپات کے لیے کورٹ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے کہ آپ نے بتایا، 4 ڈاکٹروں کی ٹیم نے، اور جس میں کلینکل سائیکولوجسٹ بھی تھے، 5 لوگوں کی پینل نے کورٹ کے آدیش پر آج لڑکی کا نرکشن کیا۔ پینل میں شامل ڈاکٹروں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ بچے کو جنم دینے سے لڑکی کے جیون کو گمبھیر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی کے چلتے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پیڑتا گربھپات کروا سکتی ہے۔ پیڑتا کی پہلے بھی جانچ کری جا چکی ہے، اور ڈاکٹروں نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ یہ مانسک روپ سے بےحد پریشان ہے اور بچہ جننے کے لیے شاریرک روپ سے بےحد کمزور ہے۔ اسی کے چلتے یہ معاملہ تب اٹھا جب گجرات ہائی کورٹ نے پیڑتا کی یاچیکا پہ انہیں گربھپات کرنے کی منظوری نہیں دی، اور بعد میں سپریم کورٹ نے ان ڈاکٹروں کی پینل کو اپوائنٹ کیا تھا جنہیں یہ بتانا تھا سپریم کورٹ کہ کیا گربھپات کرنے سے لڑکی کی جان بچ پائے گی، اور گربھپات نہیں کیا تو کیا سچویشن آئے گی۔
جی،
پیڑتا غور طلب ہے کہ اس سال فیبروری مہینے میں یہ لڑکی ٹائیفائڈ کا علاج کرانے جس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے ہی کتھت روپ سے اس کا بلاتکار کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے پریوار والوں نے گربھپات کے لیے آویدن کیا تھا، جسے نچلی عدالتوں کے سہت گجرات ہائی کورٹ نے بھی ٹھکرا دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے 25 जुलाई को इस सुनवाई के वक्त यह लड़की को 24 हफ्ते की गर्भपात थी।
जी अंकुर, ऐसा मामला पहले भी अहमदाबाद से ही आया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस लड़की की अर्जी को अस्वीकार कर दिया था। क्या उनके परिवार वालों से बातचीत हो पाई है आपकी, उनका क्या कहना है?
बिल्कुल, इसी साल अप्रैल में इसी तरह का मामला उठा था, जब एक महिला 8 महीने तक गैंगरेप विक्टिम थी, 8 महीने तक रेप होने के बाद जब गर्भपात गिराने की याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, तब हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। और इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने बच्चा डिलीवर हुआ है, और अब हाईकोर्ट के आदेश पर उसे एक एबॉर्शन एक ऑर्फनेज सेंटर में दे दिया गया है। लेकिन उनके परिवार वालों से बात नहीं हो पाई है और उनके पीड़िता से बात नहीं हो पाई, और परिवार वालों ने इस पर कुछ बोलने से इनकार किया है कि वो इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते।
जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे अहमदाबाद से अंकुर जैन। मलेशिया में कथित रूप से बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के मजदूरों के मामले पर अब केंद्र सरकार ने पहल की है। राज्य के श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े का कहना है कि राज्य और केंद्र की सरकार मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है, और अगले 2 दिनों में मजदूरों के मामले को सुलझा लिया जाएगा। पूरा मामला बता रहे हैं रायपुर से आलोक पुतुल।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के 17 मजदूरों को मलेशिया में कथित रूप से बंधक बनाए जाने का मामला पिछले पखवाड़े तब सामने आया जब परसदा, नगारीडी, परसाडी जैसे गांवों के ग्रामीणों ने जिले के कलेक्टर के पास पहुंचकर शिकायत की। ग्रामीणों का कहना था कि उनके परिजनों को एक स्थानीय दलाल अच्छी तनख्वाह और सुविधाओं का लालच देकर मलेशिया ले गया, और वहां उन्हें पिछले 3 महीनों से बंधक बनाकर रखा गया है। ग्रामीणों ने मलेशिया में कथित रूप से बंधक बनाए गए अपने परिजनों के फोन रिकॉर्डिंग भी कलेक्टर को सौंपे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके परिजनों को न तो खाना पीना दिया जा रहा है और न ही बीमार होने पर उनका इलाज कराया जा रहा है। उनके पासपोर्ट और वीजा भी छीन लिए गए हैं। मनहरन कोशी के दामाद गजपति 3 महीने पहले मलेशिया गए थे। मनहरन का कहना है कि उनके दामाद बीमार हैं, फिर भी उनका इलाज वहां नहीं हो रहा है और उनके साथ मारपीट हो रही है।
दमानधर मलेशिया के रही से परसदा के ठेकेदार जो है विजय बर्मन के, बहला फुसला के लगी से और वहाँ बंधक बना के रखे, खाना पीना दवाई माटी सब के तरफ से प्रताड़ित कर थे, खाना भी नहीं देते, और साथ साथ खुद के माध्यम से हम बता थे कि इसने तकलीफ पातन करके, और एक शिकायत हम कलेक्टर SP और श्रम विभाग में करे।
नगारीडी गाँव के लक्ष्मण महिलांगी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी उन लोगों में शामिल है जिन्हें कथित रूप से मलेशिया में बंधक बनाया गया है। लक्ष्मण अपने भाई की स्थिति को लेकर बेहद परेशान हैं।
मेरा छोटा भाई है शत्रुघ्न महिलांगे, जो परसदा निवासी विजय बर्मन के संग मलेशिया विजय बर्मन ले गया है बल्ला फुसला कर की इतना पेमेंट दूंगा आप लोगों को, और नहीं वहां जाने के बाद उन लोगों को कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, न कुछ नहीं, खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है, रोज फोन कर रहा है कि हमारे पीछे दो दो चार चार गार्ड लगा हुआ है 24 घंटा सोने को न खाने को नहीं।
जिले के श्रम अधिकारी राजेश आदिले का कहना है कि जांजगीर चांपा समेत दूसरे जिलों से मलेशिया गए 22 मजदूरों के बंधक बनाए जाने का पूरा मामला उन्होंने आला अधिकारियों तक पहुंचा दिया है।
एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है जिसमें इस जिले से 17 श्रमिक एवं पूरे छत्तीसगढ़ से 20 श्रमिक मलेशिया ले जाया गया है, जिस पर कार्रवाई हमारे कार्यालय से किया जा रहा है। हमने हेड ऑफिस बात किया है और हेड ऑफिस में कहा गया कि पत्र तत्काल भेज दिया जाए।
बुधवार को इस मामले में राज्य के श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की, और फिर उन्होंने मलेशिया स्थित दूतावास से भी संपर्क किया।
मलेशिया के हमारा दूतावास उससे भी हमारी बात सेक्रेटरी साहब ने भी बात की, तत्काल सुषमा जी बोली कि आप तत्काल बात कर लीजिए, और बात करने के बाद उनसे ये हुआ कि मालिक को दूतावास से बातचीत करके और मजदूरों के बीच बात करें, तो ये बात आज ये लोग गए हैं उनके पास बात करने के लिए, मालिक और लेबर के बीच में बैठक होगी। अगर वो अपने मन से रहना चाहते हैं, एग्रीमेंट किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको किसी प्रकार तकलीफ है, आना चाहते हैं, विदेश मंत्रालय जो अपना है ना, वो बात करके उनसे बात करेंगे वो मालिक से।
श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े का दावा है कि अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के मजदूरों का मामला सुलझा लिया जाएगा। जाहिर है जांजगीर चांपा से मलेशिया गए मजदूरों के परिजनों को सरकार के अगले कदम की बेसब्री से प्रतीक्षा बनी हुई है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब समय है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय। आपकी राय के साथ हाजिर हूँ मैं मोहनलाल शर्मा और मेरे साथ मौजूद है इंदु पांडे। इंदु, आज चिट्ठियों की शुरुआत कहाँ से कर रही हैं?
आज चिट्ठियों की शुरुआत में हम सबसे पहले ले रहे हैं उमेश कुमार यादव की चिट्ठी, जो उन्होंने भेजी है लखनऊ से। बहुत ही गंभीर बात बोली है। कहते हैं कि पूजनीय याकूब मेमन साहब को आपने जिन विनम्र शब्दों में श्रद्धांजलि दी है, उसके लिए आपको हार्दिक साधुवाद। आप उनके लिए जिन आदरणीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लग रहा था कि वो शांतिदूत और मानवता के सबसे बड़े शुभचिंतक थे। आप अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे कि याकूब मेमन ऐसे थे, ये इन्हें ठीक नहीं लगा।
उमेश यादव, ये आज आप जो सवेरे का कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, उस पर याकूब मेमन को जिस तरह से फांसी दी गई है, उसकी रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह की शब्दावली का या जिस तरह के वाक्य विन्यास का इस्तेमाल हम करते हैं, ये तमाम हमारे श्रोता इस बात की शिकायत करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहूं कि जो बीबीसी की संपादकीय नीति है, उसके तहत इन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। इससे पहले भी इस तरह की कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और आज उसी श्रृंखला में आपकी जो शिकायत है वो भी दर्ज हो रही है। निश्चित तौर पर कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों को सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन हमारा मकसद एकदम, हम अपनी संपादकीय नीति के हिसाब से इन शब्दों का चयन करते हैं और जहां तक आपकी बात है, हम इसे स्वीकार करते हैं।
मोहनलाल जी, ऐसी ही बात मेरे मन में भी आई थी कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है वैसे?
नहीं, और मेरे ख्याल से जो जवाब मैंने दिया है उससे आप भी सहमत होंगे। और इसी तरह से जहां पर भी टेररिस्ट अटैक होते हैं तो उनके लिए हम चरमपंथी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें की हम प्रसारण करते समय जिनका हम प्रयोग करते हैं।
और दूसरी चिट्ठी है सुरेंद्रनाथ सिंह की नागांव आसाम से। कहते हैं कि भाई बीबीसी का विशेष प्रसारण फैला उजियारा बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं कि वो सभी कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ है।
वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मूल रूप से ये जो श्रृंखला है ये सुनील खिलनानी की है, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हैं, और उसी का अनूदित संस्करण हम आपके पास ला रहे हैं, जिसे कि आप सुन रहे हैं और सराह भी रहे हैं।
इसके अलावा मेरे पास एक चिट्ठी और भी है फैला उजियारा से संबंधित। यह है ओम प्रकाश मंजुल पूरनपुर उत्तर प्रदेश से।
वाह, मैं देख रहा हूँ कि लाल रंग से इन्होंने पता लिखा है बीबीसी का और मोहर लगी हुई है ओम प्रकाश मंजुल साहब
जी। ये लिखते हैं कि जानकर खुशी हुई कि आपने विश्व की महान विभूतियों पर आधारित एक नए कार्यक्रम फैला उजियारा की श्रृंखला शुरू की है और बहुत अच्छा लगा है इनको।
बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन इसके बारे में कहते हैं कि कई वाक्य ऐसे बोले गए जिनमें तथ्य के प्रति निश्चित ज्ञान के अभाव का एहसास हो रहा था। और इन्होंने वाक्य भी लिखा है कि वसंत का मौसम था, बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे।
शिकायत क्या है?
शिकायत इनकी यही है कि ऐसे वाक्य बोले गए जिसमें तथ्यों का इनके अनुसार इतना अच्छे से कहा नहीं गया है।
हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ये पीपल का वृक्ष था और इसी के नीचे सिद्धार्थ को बोधिसत्व प्राप्त हुआ था, इसलिए बाद में ये वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। जब तक महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ थे, जब तक उनमें ज्ञान नहीं था, तब तक वो पीपल का पेड़ ही शाश्वत सत्य था। तो मंजुल जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस शब्द का हमने बोधिसत्व बोधि वृक्ष का इस्तेमाल किया, वो निश्चित तौर पर पीपल का पेड़ था। आप इसको इस तरह से ना देखें, इसको इस तरह से ना देखें, आप उसके बड़े परिदृश्य को देखें। और अगर आप तथ्य की अगर बात कर रहे हैं तो आप ये चाहते हैं, हम ये कहते कि सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और हमने कहा कि बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। ये एक वाक्य की सुंदरता है और जहां तक तथ्य है, ये तथ्य दुनिया जानती है।
बिल्कुल
ठीक है, लेकिन आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है और कोशिश करेंगे कि जो आपने बात कही उस पर हम आगे भी विचार करें।
और ये हमारे पास ईमेल आया है एहसान असगर का मलकापुर महाराष्ट्र से। भाई ये रेहान साहब को ढूंढ रहे हैं।
ये मेरे ख्याल से कुछ विवेचनाएं हैं जो अभी रेहान साहब नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कुछ विवेचनाएं मैंने की हैं और विनीत खरे ने अभी हाल ही में विवेचना की है और ये शायद विनीत खरे की विवेचना का जिक्र कर रहे हैं।
जी जी जी,
क्या कह रहे हैं, करगिल पे विवेचना थी ये?
कहते हैं कि रेहान जी, गैर हाजिरी में इस बार विवेचना विनीत जी ने पेश की बहुत ही शानदार थी, लेकिन फिर भी रेहान जी की कमी महसूस हो रही थी।
बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको बता दें कि रेहान फजल जो है वो एक विशेष श्रृंखला पे काम कर रहे हैं और वो विशेष श्रृंखला जल्द ही आपको सुनाई देगी और जब तक उसकी तैयारी वो कर रहे हैं, तब तक मैं या फिर विनीत खरे या हमारे बाकी सहयोगी विवेचना आप तक ला रहे हैं और कल भी आप विवेचना सुनेंगे।
तो आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे मोहनलाल शर्मा और इंदु पांडे। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। मुंबई बम विस्फोटों के दोषी याकूब मेमन को आज शाम लगभग 5:15 बजे मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पाकिस्तान के मुताबिक अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता टाल दी गई है। मिस्र की राजधानी काहिरा की एक अदालत ने न्यूज़ चैनल अल जजीरा के 3 पत्रकारों पर दोबारा मुकदमे में फैसले को मुलतवी कर दिया है। तुर्की की सेना का कहना है कि कुर्द अलगाववादियों ने देश के दक्षिण पूर्व में 3 सैनिकों को मार दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की शरणार्थियों की ब्रिटेन आने की कोशिशों को झुंड बनाकर जमघट लगाना बताने के लिए व्यापक आलोचना हो रही है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ दिन भर में आज बस इतना ही। तकनीकी सहयोगी हेमंत शर्मा कुशवाहा के साथ मुझे दीजिए अनुमति। आपसे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक नमस्कार।